परवरदिगार की जानिब है। इस बेहतरीन प्रोग्राम में इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, हम इसमें मालूम करेंगे कि ये माह मुबारक हमसे क्या चाहता है, जो परवरदिगार ने एक अजीम दस्तखान अपने बंदों के लिए बिछाया है उसकी उनकी मेहमानी के लिए, वो हमसे क्या चाहता है और ये महीना हमसे क्या तलब कर रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस बेहतरीन मौजू के साथ जो है वो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास तीन हमारे मेहमान ने गिरामी है। दो का ताल्लुक जो है वो कुम से है और एक लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं नाम ले देता हूँ, मौलाना सैयद अली रजा जान काजमी साहब कुम से हैं, मौलाना सैयद आरिफ हुसैन कुम से हैं, मौलाना सैयद मोहम्मद रजा जान काजमी साहब लंदन से हैं। आप तीनों मेहमानों की खिदमत में सलाम अर्ज करूंगा और आपको प्रोग्राम खुदा की तरफ में खुश आमदीद कहूंगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और बढ़ेंगे मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काजमी साहब की तरफ। काजमी साहब, इस रूहानी महीने में ये परवरदिगार का एक ऐसा महीना है जिसके अंदर जो है वो सांस लेना, सोना, यानी तमाम चीज़ें जो है वो तस्बीह और इबादत शुमार होती हैं। तो इस रूहानी महीने में अपनी रूहानियत को मज़ीद किस तरह से बढ़ाएँ, किस तरह से मुस्तहकम करें?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं भी आमद माह मुबारक को तमाम सामीन को हज़रात को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है कि माह मुबारक रमज़ान कितनी अहमियत क्यों है। देखिए, नमाज को हम हर महीने में अदा करते हैं, लेकिन उस नमाज का सवाब इस माह मुबारक में इतना क्यों है? आप कह सकते हैं कि ये माह मुबारक रमज़ान हमारी इबादात को एक तरह से बूस्ट लगाता है, यानी ये एक अल्लाह की तरफ एक खिड़की है कि जब हम इस माह मुबारक में इबादतें करते हैं, हम बहुत जल्दी अल्लाह तक पहुंच सकते हैं और वो रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि हम किस तरह अपनी रूहानियत को इस महीने में बढ़ा सकते हैं। माह मुबारक रमज़ान क्योंकि रूहानियत का महीना है और इंसान का ताल्लुक भी अल्लाह के साथ रूहानी होना चाहिए, और वजूद इंसान भी दो चीज़ों से बना हुआ है, यानी एक जिस्म है, दूसरा रूह है। तो मासूम का फरमान है कि इंसान इस महीने में अपने ईमान को मजबूत करे। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्तसर ये करूं कि इंसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईमान कहते किस चीज़ को है। दुआए मकारिमुल अखलाक का एक जुमला है कि माँ फरमाते हैं कि परवरदिगारा मुझे ईमान कामिल अता कर, यानी हर मोमिन ये दुआ करे कि खुदा उसे कामिल मोमिन बनाए। अब क्या ईमान के दर्जा ऊपर नीचे हैं, क्या वेदर है, कभी गर्म होती है कभी ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर कभी हाई होता है कभी लो में चला जाता है, क्या ईमान की सूरत हाल भी ऐसे है कि कभी ये लो होता है कभी हाई होता है? तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईमान है क्या, ईमान कहते किस चीज़ को है। यहाँ पर हमें दो अकीदे मिलते हैं, मैं इशारा करूँगा इंशाल्लाह फिर आगे इसकी तफसील में जाएंगे, कि एक अकीदा ये था कि इंसान के मोमिन होने के लिए ये ज़रूरी है कि बस वो अकीदा रखे, उसमें किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, अली वलीउल्लाह कह रहा है, यही तीन जुमले उसके ईमान के लिए काफ़ी हैं। यानी अगर उससे पूछा जाए कि अल्लाह कितने हैं, वो कहता है एक है, और उससे पूछा जाए नबी कितने हैं, वो तमाम तरंबिया पर ईमान रखता है। अब इसको अमल की ज़रूरत नहीं है, कहते थे इसको हम मोमिन कामिल कह सकते हैं। यानी अगर फिस्क व फुजूर में भी मुबतला है लेकिन अगर उसका अकीदा सही है, तो कुछ लोग कहते थे हम इसको मोमिन कह सकते हैं और तारीख में उनको मुर्जिया कहा जाता था। कुछ का अकीदा इसके बरखिलाफ था, उनमें सख्ती बहुत नज़र आती थी। वो कहते थे नहीं, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहा है लेकिन अगर उसके अमल में थोड़ी सी भी कोताही है, यानी अगर कलमा और अकीदा भी सही है लेकिन उसके बाद अगर उसने खुदा न खास्ता एक जिना जिंदगी में किया है या कभी उसने आमदन या गलती से शराब पी ली है, तो वो खवारिज का अकीदा था कि ये इंसान दीन से खारिज हो जाता है और इसका कत्ल करना हमारे ऊपर जायज़ है। कि इसी महीने में मौला अली अली इब्न अबी तालिब की शहादत भी है और वो इसी अकीदे की बुनियाद पर हुई कि अली का अकीदा तो सही था लेकिन अली इब्न अबी तालिब ने उनके अकीदे के मुताबिक गलती की थी और गुनाह किया था, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کی تھی، لہٰذا وہ مولا کو واجب القتل مانتے تھے یا قتل کو صحیح مانتے تھے. اب امام سے پوچھا گیا، مولا صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ ایک طرف ایک عقیدہ ہے جس میں یہ ہے کہ صرف عقیدہ ولایت اور نبوت اور توحید ہو، عمل کا وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا ایمان کامل ہے. دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، عقیدہ بھی ہو اور اگر چھوٹی سی بھی خطا کرتا ہے تو گویا وہ مقام ایمان سے نکل جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ہم ان دونوں صورتوں کے بیچ میں ہیں. وہ انسان انسان مومن ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، یعنی قلباً پروردگار عالم کو مانتا ہو، اور اس عقیدے کے ساتھ اس مومن کے وجود میں عمل بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ عمل ہو. اسی لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا ینال شفاعتنا، وہ ہماری شفاعت کو کبھی حاصل کر نہیں سکتا جس کے وجود میں جسے نماز کا وہ عادی نہ ہو یا اگر عمل نہ کرتا ہو، تو وہ انسان ہماری شفاعت کا کبھی حامل ہو نہیں سکتا. اور ایک شخص مولا علی کے پاس آئے اور میت نے جنازہ لے کر آئے. آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی تھوڑی سی صاف نہیں آ پا رہی ہے، بیچ بیچ میں آتی ہے صاف. گفتگو جاری رکھیں انشاءاللہ. جی 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 عارف شاہ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟
جی جی آواز آ رہی ہے میری، میں کنٹینیو کروں؟
جی جی آواز، جی جی آواز آ رہی ہے، فرمائیے.
بس مختصر ایک مولا کی بات عرض کر دوں کہ امام کے خدمت میں ایک جنازے کو لایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ یا علی اس میت پہ آپ نماز پڑھائیے. تو مولا ان کی نیت کو سمجھ چکے تھے. امام نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کی نماز پڑھاؤں گا اور یقیناً جو ہم پانچ تکبیریں دیتے ہیں اس بیچ میں میت کے لیے دعا بھی ہوتی ہے. تو امام فرماتے ہیں میں تو اس کے لیے دعا کروں گا لیکن میری دعا اس کو جنتی نہیں بنائے گی، اس کا عمل ہے جو میری دعا کو قبول کروائے گا. تو جب تک انسان ایمان کے ساتھ مقام عمل پر نہ ہو تب تک اس انسان کا ایمان کمپلیٹ ہو نہیں سکتا، اور جب انسان اس چیز کو کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ روحانیت کے میدان میں اپنے قدموں کو رکھتا ہے.
صحیح صحیح. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا آپ کے ساتھ، اور ابھی ہم جو ہے وہ اور مہمان آنے گرامی سے سوالات کرنے کے بعد تو اسی طرح جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے، آپ کی طرف پھر واپس آتے ہیں. علی رضا جان کاظمی صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں آپ نے قوم سے، یہ بتائیے کہ قبلہ کے روزے سے ہم جو ہے وہ کیا معنوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ذرا روشنی ڈالیے قبلہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ ماہ رمضان میں زندگی عطا فرمائی تاکہ اس ماہ رمضان سے جتنا فائدہ ہم اٹھا سکیں اور اس ماہ رمضان میں ضیافت الہی یعنی خدا کی میزبانی میں شرکت کریں. دیکھیے ہم جس آیت پہ بھی آج کل عمل کر رہے ہیں وہ وہی آیت ہے جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا ہے، مگر ساتھ میں خدا نے یہ بھی کہا کہ پریشان نہ ہونا، یہ روزہ صرف تمہارے لیے ہم نے واجب نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے بھی اقوام پر روزے کو ہم نے واجب کیا تھا. در حقیقت یہ انداز مشیت کچھ اس طرح ہے کہ اپنے مخلوقات کی خداوند متعال گویا نخرے جھیل رہا ہے، نخرے اٹھا رہا ہے کہ جس طرح جب خدا نے کہا انفاق کرو، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، میں نے تمہیں دولت دی ہیں، میں نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں انفاق کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ خدا نے اس انداز سے کہا کہ منزل لذی یقرض اللہ قرضاً حسناً، کون ہے جو خداوند متعال کو قرضہ دے دے؟ ارے خدا کو کون قرضہ دے گا؟ جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں ہم اس کو کیا قرضہ دیں گے؟ بالکل خدا کی مثال، اگر بالکل تشبیہ یعنی نزدیکی کے لیے اگر ہم سمجھنا چاہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو 2000 روپے یا 2000 تومان دیتا ہے اور پھر باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھے یہ پیسے دے دو گے قرضے کے طور پہ، ارے یہ ساری ملکیت تو باپ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ تو انہی کی دین ہے، یہ انہی کی طرف سے آیا ہے. مگر خداوند متعال ہمیں بالکل اسی انداز سے کہہ رہا ہے، منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو قرضہ دے اور راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت میں خداوند متعال کا انداز محبت کا انداز ہے۔ دنیا کی خلقت قہار اور جبار سے نہیں ہوئی، دنیا کی خلقت رحمان اور رحیم سے ہوئی ہے۔ اور اس آیت میں بھی اسی طرح کہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تمہیں ہم نے جو روزے واجب کیے ہیں وہ صرف تم پہلی قوم نہیں بلکہ تمہارے سے پہلے گزشتہ اقوام نے بھی روزے رکھے ہیں اور وہ روزہ رکھتے رہے تھے۔ اب یہ ایک آیت ہے جس پر الحمدللہ آپ سب، ہم چار افراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لائیو کال میں، اور اس طرح کافی دنیا میں سارے مومنین اور مسلمین اس آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ساتھ میں یہ بھی میں بتاتے چلا جاؤں، کبھی کبھار ہم کہ بعض قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، بعض پر صحیح عمل نہیں کرتے، بعض پر آدھا عمل کرتے ہیں۔ جیسے کسی استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم قرآن کی کون سی آیت پر اچھی طرح عمل کرتے ہو، تو اساتذہ نے استاد سے کہا، استاد جی یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، ہمیں سوچنے دیجیے، ہم کل آپ کو بتائیں گے ہم زیادہ تر کون سی آیت پر عمل کرتے ہیں۔ شاگرد چلے گئے، اگلے دن آئے اور استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون سی قرآنی آیت پر عمل کرتے ہو، تو کسی شاگرد نے کہا کہ میں اقیم الصلاۃ پر عمل کرتا ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، کسی نے کہا میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں تو میں آت الزکاۃ پر خرچ کرتا ہوں، آت الزکاۃ پر عمل کرتا ہوں، اور کسی نے میں اختیار کرتا ہوں، میں اتق اللہ کی آیت پر اپنا عمل کرتا ہوں۔ یہاں شاگردوں کے درمیان ایک شاگرد تھا جو بڑا خاموش بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے۔ استاد نے جو ٹاسک دیا تھا، استاد نے پھر ان سے پوچھا کہ سب نے تو بتا دیا، تم نے نہیں بتایا تم قرآن کی کون سی آیت پر عمل کرتے ہو، تو اس نے کہا قبلہ مجھے شرما رہی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ کہا نہیں نہیں بتا دو، کیا حرج ہے۔ اس نے کہا جتنی زندگی میں نے کی ہے مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے، میں کلو وشربو پہ عمل کرتا ہوں کہ کھاؤ پیو، اسی پر میری پوری زندگی گزر چکی ہے، مگر اگلے جملے کو میں نہیں دیکھتا ہوں، کلو وشربو کے بعد ولا تصرفو کو میں بھول جاتا ہوں کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرنا۔ یا پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کلو وشربو وعملو صالحن، کھاؤ پیو مگر نیک عمل بھی ساتھ میں کیا کرو۔ ہم ایک حصہ تو رمضان میں لے لیتے ہیں، کلو وشربو یعنی سحری اور افطار میں الہ ماشاءاللہ اچھا خاصا کھانا کھا لیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے جو آیت میں فرمایا کہ وعملو صالحن، کھانے پینے کے بعد ذرا عمل صالح بھی کیا کرو، تو معنوی فائدہ اصل میں اس وقت اٹھائیں گے کیونکہ جب ہم اپنے شکم سے فارغ ہو جائیں۔ کیونکہ یاد رکھیے عقل اور شکم دو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا رجحان اگر عقل کی طرف بڑھ جائے تو خود بخود شکم کی طرف گھٹ جائے گا، اور اگر آپ کا رجحان شکم اور پیٹ کی طرف بڑھ جائے خود بخود عقل کی طرف آپ کا رجحان گھٹ جائے گا۔ دیکھیے آپ ہمارے کھانے کا انداز یا ہماری زندگی میں رمضان سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا رمضان صرف ایک افطاری اور افطاری کے بعد کھانا، کھانے کے بعد دو ڈھائی بجے کچھ کھانا، پھر اس کے بعد سحری کرنا، کیا اسی کا نام ہے کہ ہم جتنا ہمیں ٹائم ڈیوریشن دیا گیا ہے اس ٹائم ڈیوریشن میں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کے کھا لیں، اور پھر بعد میں جو ہے پورا دن ہم کو گزارنا ہے اور اتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، جبکہ رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے اس کے لیے صرف میں ایک حدیث بتا دوں گا اور پھر ہم اگلے بزرگوار کی طرف چلیں گے، کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو چاہتا ہے کہ تم کبھی، اگر تو چاہتا ہے کہ کبھی بیمار نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی ڈاکٹر کو نہ دیکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں کبھی طبیب کی طرف نہ جائیں، یہ نہیں کہ الحمدللہ ہمارے دوست بھی جو سننے والے ہوں گے جو ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں مگر ہم انہیں اس وقت نہیں دیکھنا چاہتے کہ جب بیمار ہو جاتے ہیں، تو امام فرما رہے ہیں اگر چاہتے ہو کبھی ہمیشہ کے لیے طبیب سے بے نیاز ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جاؤ، اے میرے بیٹے حسن ان چار چیزوں پر عمل کر لیا کرو۔ پہلا کیا نسخہ مولا نے فرمایا؟ مولا نے فرمایا میرے بیٹے کبھی بھی نہ کھانا مگر یہ کہ تجھے زیادہ سے زیادہ بھوک لگی ہو، یعنی کھانا اس وقت جب تمہیں بھوک لگی۔ ہم کیا کرتے ہیں افطار کھا لیے، افطار کے ایک دو گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں، اور یہ ایک ٹرم ہمیشہ انگلش میں یوز ہوتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ گریزنگ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی گریزنگ کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ ہوتا ہے چرنا، یعنی انسان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ گریزنگ کر لیا کرو، تھوڑا تھوڑا کھا لیا کرو، ایک گو میں نہیں کھایا کرو مگر کھاتے ہی رہو شروع سے آخر تک، جبکہ یہ انسان کی نہ صحت کے لیے اچھا ہے نہ اسلامک پرسپیکٹو سے یہ قابل قبول ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں جب بھی کھانا اس وقت کھانا جب تمہیں بھوک لگی ہے۔ دوسرا फॉर्मूला मौला ने फरमाया, मेरे बेटा हसन जब भी खाना, पहला फॉर्मूला ये था, जब भी खाना जब तुम्हें शदीद भूख लगे, नंबर दो, दूसरा फॉर्मूला, अभी तुम्हारे जिस्म में, अभी तुम्हारी फीलिंग में भूख बाकी है तो खाने से हाथ रोक देना, यानी अभी भूख बाकी है, अभी मुझे खाने का दिल कर रहा है मजीद भी, अभी मैं मजीद खाने चाहता हूँ मगर मैंने हाथ रोक दिया। ये दूसरा फॉर्मूला है कि इंसान अगर चाहता है बिल्कुल बीमार ना हो। और तीसरा फॉर्मूला जो मौला ने फरमाया कि मेरे बेटे हसन अगर चाहते हो कि कभी बीमार ना हो, जब भी खाना खाओ अच्छी तरह चबाओ। और चौथा फॉर्मूला मौला ने फरमाया कि जब भी तुम चाहते हो, अगर जब भी तुम सोने की तैयारी करते हो, ज़रूर टॉयलेट जाना, ज़रूर वॉशरूम यूज़ कर देना। अब देखिए ये चार सिंपल अहले बैत के फार्मूलाज हैं और मौला ने बता दिया इस फॉर्मूले पर अगर कोई अमल करेगा तो वो कभी बीमार नहीं होगा। तो मकसद ये कि अगर हम खाने के एतबार से और खाने की लजीज खानों से हटेंगे और कुलू वशरबू से आगे निकल कर वअमलू सालिहा यानी अमल सालेह तक पहुँचेंगे तो हमें ये मानवी असरात और मानवी फायदे रमजान के उठा सकते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी सारी है, आगे बढ़ेंगे। और मौलाना सैयद मोहम्मद रजा जान काजमी साहब, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे कि रमजान माह मुबारक, रमजान खुद को बदलने का महीना है। लोग अक्सर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि हम बदलना चाहते हैं मगर अमलिय शुरू कहाँ से करें, आप क्या कहेंगे इसमें कि इकाई क्या है, बुनियाद क्या है, कहाँ से इंसान अपने आप को बदलना शुरू करे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हर इंसान चाहता है कि बेहतरी की तरफ अपनी ज़िंदगी को बदले, हर इंसान चाहता है कि कमज़ोरियों को अपनी ज़िंदगी से हटाकर और अच्छाइयों और ताकतों की तरफ बढ़े। तो अब हम अगर चाहते हैं कि बुराइयों को अपनी तरफ से दूर करें और अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ें तो हमको क्या करना चाहिए? बहुत सारे तरीके हैं, अहादीस रिवायात बताती हैं, लेकिन अभी जिस महीने में हम हैं ये वो अजीम व शान महीना है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो इतनी अजीम व शान नेमत तुम्हें अता हुई है कि लव आलिम अल अब्द मा फी रमदान। ये हदीस कहती है अगर बंदे को, इंसान को, मोमिनीन को, रोजेदारों को पता चल जाए कि रमजान में कितने फायदे हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, कितने खास स्पेशल अल्लाह की तरफ से एहसानात और अल्लाह की तरफ से ऑफर्स हैं, अगर मुसलमान, अगर अब्द यानी बंदा, मुसलमान और शिये के बारे में नहीं कहा, यानी कोई भी बंदा अगर जान ले कि इस रमजान में कितने फायदे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लवद अन यकून रमजान हसन, कि वो आरजू करेगा, वो ख्वाहिश करेगा काश पूरा साल रमजान होता। ये जो बाज लोग कहते हैं भाई ये फिर आ गया महीना, फिर जनाब रोजे रखने पड़ेंगे, फिर जनाब वो खाना पीना बंद, फिर जनाब अब हम 16 घंटे 18 घंटे, बाज लोगों का गिला शिकवा होता है, अरे फिर खाना बंद। अब इस रमजान में जो फायदे, जो बेनिफिट्स, जो ऑफर्स, जो एहसानात, जो नेमतें, जो करम स्पेशल अल्लाह की तरफ से हम पे नाजिल हो रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते अगर बंदे को, अल्लाह के बंदे को पता चल जाए कि जनाब इस रमजान में कितने फायदे हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, कितनी स्पेशल ऑफर्स लगी हुई हैं, तो वो चाहेगा पूरा साल मुझे अल्लाह रमजान ही अता करे। अब अगर मैं खुद को बदलना चाह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिंदा हूं, इस साल फिर रमजान मुझे मिल गया, तो अब मैं अगर खुद को बदलना चाहता हूं तो जैसे मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं रिवायात में मिलती हैं, एक बात की तरफ इशारा करूं वो कौन सी बात है, वो यही रोजा है कि मैं अगर खुद को बदलना चाहता हूं इसी रोजे। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अभी जो सामीन हैं, जो नाजरीन हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो माशाल्लाह सारे रोजे में होंगे, अक्सर रोजा रख रहे हैं, बाज एक साल से, बाज का पहला साल होगा, बाज पिछले 5 सालों से रख रहे हैं, बाज पिछले 10 सालों से, बाज तो 50 साल से रोजा रख रहे होंगे, माशाल्लाह बड़ी फख्र की बात है, 50 साल से मैं रोजा रख रहा हूँ, 60 साल से मैं रोजा रख रहा हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है जब दुनियावी मामलात में हम आते हैं तो अगर मैंने किसी को 10 साल पहले देखा और वो अगर 5वीं क्लास में था, 10 साल के बाद उसका कम से कम जो है बीए हो जाना चाहिए, यही है ना कि भाई अगर मैंने किसी को देखा 10 साल पहले किसी क्लास में था, अब 10 साल आगे उसे बढ़ना चाहिए, 10 साल वो आगे बढ़ता है, अगर 10 साल पहले वो मैट्रिक कर रहा था, अभी अगर वो अभी तक पढ़ रहा है, अभी तो उसको PhD में होना चाहिए, अगर वो कंटिन्यूस पढ़ रहा है, अगर वो 10 साल से पढ़ रहा है तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, अगर काम कर रहा है 10 साल का तजुर्बा होगा अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में आया है। लेकिन अगर मैं किसी से 10 साल पहले मिलूं कि भाई पहली क्लास में था, ग्रेड 1 में था, 10 साल के बाद मिलूं, पूछूं हाँ भाई बेटा कौन सी ग्रेड में हो? वो कहे मैं तो अभी तक पहली ग्रेड में हूँ। तो हंसने की बात भी है, रोने की बात भी है, भाई तू पहली ग्रेड में क्लास वन में पीएचडी क्यों कर रहा है? अच्छा, दुनियावी मामलात में तो हम तरक्की करते हैं। मेरा बच्चा माशाल्लाह पिछले साल छठी में था, अब सातवीं में जाएगा, पिछले साल आठवीं में था, अब नवीं में जाएगा, अब माशाल्लाह मैट्रिक हो गया, बीए हो गया, माशाल्लाह तरक्की हमारे बच्चे करते हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन दीनी मामलात में प्रॉब्लम यह है, ना हमारे बच्चे तरक्की करते हैं, ना हम तरक्की करते हैं, ना हमारी फैमिली तरक्की करती है। दुनियावी मामलात में तो
ऐसा
बच्चों को
क्यों
बड़ा
है?
हम शौक दिलाते, बेटा तरक्की
ऐसा
करो, पढ़ो, और बहुत अच्छी बात
हाँ,
है।
ऐसा क्यों है, वजह क्या है?
जी, अब इसी की तरफ मैं आ रहा हूं कि दुनियावी मामलात में हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। रसूल खुदा ने, इमाम अली ने, अहले बैत ने, 14 मासूमी ने यही कहा कि देखो दुनियावी लिहाज से भी अपना इल्म बढ़ाओ, उतलुबुल इल्म, अपना इल्म बढ़ाओ, वलो बिस्सीन इवन चाहना, उतलुबुल इल्म महद से लहद तक, यानी गहवारे से कब्र तक। इल्म कमाने से, इल्म हासिल करने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हम जितनी अहमियत इल्म हासिल करने, दुनियावी इल्म हासिल करने को देते हैं, उतनी अगर क्या उससे थोड़ा 2-4-5% हम अहमियत अगर अपने मानवियात और स्पिरिचुअलिटी को दे दें कि भाई मैं पिछले 50 साल से रोजा रख रहा हूँ, पिछले 60 साल से रोजा रख रहा हूँ, पिछले 10 साल से रोजा रख रहा हूँ, रोजे की कौन सी लेवल पर हूँ, रोजे की कौन सी ग्रेड पर हूँ। अहादीस बताती हैं कि देखो अगर खुद को बदलना है तो रोजे की पहली ग्रेड पे बाकी न रहो। रोजे की पहली ग्रेड, पहली लेवल क्या है? वो जो हम सब रखते हैं, खाना पीना मना। भाई मुब्तिलाते रोजा कितने हैं? 9 मुब्तिलाते रोजा हैं, उन तमाम चीजों को हम छोड़ते हैं, ठीक है जी। ये एक आम रोजा है जो हम सब सालों से रखे आ रहे हैं। अब मुझे अगर खुद को बदलना है, मैंने अपने को अपग्रेड करना है, अपना रोजा अपग्रेड करना है, जैसे अपना मोबाइल अपग्रेड करते हैं, अपना लैपटॉप अपग्रेड करते हैं, विंडो अपग्रेड करते हैं, इसी तरह अपने रोजे को भी अपग्रेड करना है। भाई ये क्या बात है, पिछले 10 सालों से तुम उसी ग्रेड वन में हो रोजे में। ये ग्रेड वन है कि भाई खाना नहीं खाना, पीना कुछ नहीं है जनाब, वो जनाब सेक्सुअल जो एक्टिविटीज है उन सब से दूर रहना है, और जनाब जबरदस्ती उल्टी नहीं करनी है, गुबार अंदर नहीं जाना, ये जो 9 मुब्तिलाते रोजा बताए गए, ये तो वो नॉर्मल सी बातें हैं जो हम 10 सालों से उसी रोजे पे फंसे हुए हैं। अब इसको अपग्रेड करना है, इसे खुद को बदलिए। भाई कब तक उसी ग्रेड वन में रहेंगे, कब तक क्लास वन में रहेंगे? थोड़ा सा उसको बड़ा कोशिश, रमजान का महीना ये कि अल्लाह हमें ट्रेन करना चाह रहा है, अल्लाह ने जो नेमतें अता की हैं रमजान की, अल्लाह इसमें हमें विल पावर देना चाह रहा है, अल्लाह हमें कह रहा है कि अपना अदा करो और आगे बढ़ो, कब तक पीछे रहोगे, आगे बढ़ो भाई। और आगे क्या बढ़े, कहा एक लेवल ये है कि आम रोजा जो हम सब रख रहे हैं, अब खुद को बदलना है, हमने उस दूसरी लेवल तक पहुंचना है। दूसरी लेवल क्या है? दूसरी लेवल है खास रोजा। अब देखिए हम खुद को बदलें और उस खास रोजे तक पहुंचे। अच्छा आप कहेंगे ये खास रोजा क्या होता है? क्या खास रोजे में अगर अभी हम 16 घंटे का रोजा रख रहे हैं तो खास रोजा 26 घंटे का होता है? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं होता। खास रोजा ऐसा नहीं है कि भाई दिन में नहीं रात में होगा, नहीं, खास रोजा यही रोजा है। लेकिन उस खास रोजे में कमाल यह है कि जैसे हम आम रोजे में अपने आप को 9 चीजों से रोक रहे हैं कि भाई ये खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, और दूसरी जो 9 मुब्तिलात रोजा है उनसे खुद को दूर रख रहे हैं, अब खास रोजा क्या है कि जैसे मैं अपनी जबान पे खाना नहीं रख रहा, क्योंकि अगर मैंने खाना खा लिया और खाना पेट में चला गया, गले से नीचे चला गया, तो रोजा बातिल हो जाएगा, इसी तरह इस जबान पे करना है। अब मैं इस जबान से गीबत भी नहीं करूंगा, इस जबान से गाली भी नहीं दूंगा, इस जबान से बदतमीजी भी नहीं करूंगा। यह है खास रोजा। खास रोजा क्या है? यानी अब मैं आमाल पे भी कंट्रोल करूंगा कि मैं कोई गुनाह, अच्छा आप देखिए अगर मैंने झूठ बोल लिया, मगर ये खुदा और रसूल पे झूठ बोले उससे रोजा बातिल हो जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल झूठ बोल दिया उससे रोजा मुब्तिलाते रोजा में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन खास रोजा ये है कि अब मैं जबान से भी झूठ नहीं बोलूं, मैं ये समझूं कि अगर मैंने झूठ बोल दिया तो मेरा रोजा गोया काम का ही नहीं रहा, अब आंख से मैं गुनाह नहीं करूंगा। ये नहीं कि रोजा रखा है और जनाब आंख से जनाब जिना पे जिना कर रहा है, और जनाब फिल्में पे फिल्में देख रहा है गंदी गंदी, और जनाब गलत गलत गाने सुन रहा है, और जनाब गलत गलत हराम हराम काम कर रहा है। नहीं, खास रोजा ये है कि जैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं हलाल चीजों पे, जो अल्लाह ने आपको वैसे इजाजत दी हुई है करने को, अब इसी तरह आप हराम चीजों पर भी कंट्रोल करें। ये एक ट्रेनिंग है कि ए इंसान, तू 16 घंटे जब हलाल खाना छोड़ सकता है, अब ये ट्रेनिंग होगी, अब तू हराम खाना भी छोड़ सकता है। भाई 16 घंटे तू हलाल बीवी को छोड़ सकता है, इसका मतलब ये अब तू जिना पर भी कंट्रोल कर सकता है, हराम गुनाह पर भी कंट्रोल कर सकता है। ये हो गया खास रोजा। वक्त है हमारे पास, हेलो आवाज आ रही है अली भाई?
जी, आवाज आ रही है। जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी।
हमारी आवाज आ रही है जी।
जी, आपकी आवाज आ रही है। फरमाइए फरमाइए, कंटिन्यू रहे,
अच्छा,
आपकी आवाज
अब
आ रही
मैं
है।
एक और लेवल भी बता दूं कि हमको अगर चेंज करना है तो हम खुद को इस महीने से रोजे से चेंज करना शुरू करें। एक हो गया आम रोजा जो सब रखते हैं, 9 चीजों से खुद को बचाते हैं। एक हो गया खास रोजा कि अब इस खास रोजे में हम क्या करेंगे, अपने आमाल को भी कंट्रोल करेंगे। यानी अब हाथ से कोई गुनाह नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, आंख से कोई गुनाह नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, जबान से कोई गुनाह नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, कान से कोई हराम नहीं सुनेंगे, गीबत नहीं सुनेंगे, फितना नहीं सुनेंगे, पांव से ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां जाने से अल्लाह ने मना किया। ये हो गया खास रोजा। लेकिन अब हमने खुद को बदलना है ना। हर इंसान तरक्की चाहता है, हर इंसान बेहतरी की तरफ जाना चाहता है, हर इंसान खुद को आला मकामात पे देखना चाहता है। अब अगर मैंने खुद को आला मकामात पे पहुंचाना है, आम रोजे से खास रोजे में आया और खास रोजे से खासुल खास रोजा। वो क्या है खास रोजा? क्या है यानी वेरी स्पेशल रोजा? उसमें यह है कि जैसे मैं अपने पेट पे कंट्रोल कर रहा हूँ रोजे में, जैसे फिर मैं अपनी जबान पे कंट्रोल कर रहा हूँ, अब मैं गाली नहीं दूंगा, जैसे मैं अपनी आंख पे कंट्रोल कर रहा हूँ, अब नामहरम को नहीं देखूंगा, खासुल खास रोजा ये है कि अब मैं अपने ख्याल पे भी कंट्रोल करूंगा कि मैं अपने जहन में गुनाह का ख्याल ही नहीं आने दूंगा।
सुभान अल्लाह।
अब हमने
सुभान
इंशाल्लाह
अल्लाह
कोशिश ये करनी है कि हम खुद को बदले रोजे के जरिए से आम रोजे से खास में आए और खास से खासुल खास में आए।
बिल्कुल ऐसे ही, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा जो है वो नाज़िन गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जो है वो जारी व सारी है, जो कि वक्त की जो है वो किल्लत है और एक टाइम में रहते हुए हमने जो है वो इन तमाम उमूर को जानना है, और इसलिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम ही मेहमान तमाम ही मेहमान आने गिरामी को जो है वो एक बराबर से जो है वो इसके अंदर अदल कर सकें और वक्त मिल सके। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काजमी साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। असकार असकार तो बहुत हैं, मगर रूहानियत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन जिक्र कौन सा है, ये जरा फरमाइए। फिलहाल
जी, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद रूहानियत को हमें बहुत डीपली उसको स्टडी करना है, क्योंकि वक्त में कमी है, मैं मुख्तसर आपकी खिदमत में बयान करूंगा। देखिए, जिस तरह एक काश्तकार जब अपना बीज लेता है, वो कभी भी ऐसी ज़मीन में बीज नहीं डालता जिस ज़मीन में सलाहियत ना हो। पहले वो ज़मीन को तलाश करता है कि ज़मीन में सलाहियत होनी चाहिए। अगर ज़मीन में सलाहियत भी मौजूद है तो वो दूसरी चीज़ ये देखता है कि ये ज़मीन तब मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी जब इस ज़मीन की मिट्टी नरम हो। कभी भी सख्त ज़मीन पे वो बीज नहीं रखता, क्योंकि वो बीज ज़ाया हो जाता है। हमारे जितने भी आमाल हैं ये एक तरह से बीज हैं, क्योंकि ये वहाँ पे जाके हमें जन्नत में इसका असल में असर नज़र आता है। मसलन यहाँ पर आपने नमाज पढ़ी, इसका पौधा, इसका फल आपको आखिरत में मिलेगा। आपने कोई जिक्र परवरदिगार आलम किया, इसकी जो असल सूरत है वो आपको आखिरत में नज़र आएगी। ये सरा मासूम फरमाते हैं कि नमाज शब जो है वो इंसान की कब्र की रोशनी है, ये रोशनी उसकी सूरत है जो इस दुनिया से जाने के बाद आपको नजर आती है। तो जिस तरह बीज को जमीन में डाला जाता है जिस जमीन में सलाहियत हो, और सलाहियत होने के बाद ये देखा जाता है क्या जमीन अब तैयार भी है कि नहीं है, उसको पहले नरम किया जाता है, हल चलाया जाता है। तो हम जितने भी अजकार करते हैं ये सोचना जरूरी है कि इन अजकार की जमीन कौन सी है। उसकी जमीन ये मेरी जबान नहीं है, ये मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि ये जिस्म तो मिट्टी में मिल जाना है। उसकी जमीन कुरान में कई अल्फाज फुआद है, कल्ब है, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। आप कह सकते हैं कि इसकी जमीन जो है वो आपका कल्ब है। जिस तरह मासूम फरमाते हैं गुनाह करने के बाद ये दिल सख्त हो जाता है, ये अल्फाज जो आपको हदीस में मिलते हैं, दिल सख्त हो जाता है, कसी हो जाता है या सियाह हो जाता है, इसका मतलब ये दिल इतना सख्त है। अब अगर मैं यहाँ पे कितनी भी बातें करूँ, सुनने वालों का अगर दिल सख्त होगा उन पे असर नहीं होगा। हम तो खुद भी गुनहगार हैं, लेकिन आप ये देखें करबला के मैदान में गुफ्तगू करने वाले इमाम हुसैन हैं, लेकिन सुनने वाले सारे मुसलमान हैं, लेकिन खुद इमाम की बातों का असर उन लोगों लूप पे नहीं हो रहा था, क्योंकि दिल सख्त हो चुके थे। लेकिन जनाब हुर के दिल पर इमाम हुसैन की बात का असर हुआ, यकीनन जनाब हुर का दिल नर्म होगा। तो पहले हमें अपने दिलों को नर्म करना होगा। जब तक दिल नर्म नहीं होता तब तक कोई जिक्र हमें फायदा नहीं देता। एक आसान सी मिसाल दूं कि जिक्र अक्सर लोग कहते हैं कि हम जिक्र में तकरार क्यों करते हैं, मसलन ये जिक्र 700 मरतबा पढ़ें, 1000 मरतबा पढ़ें। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप
एक मर्तबा जमीन में बीज लगाने यानी खोदने के बाद जमीन खुदती नहीं है, जब हल चलाते हैं उसको बार बार खोदना पड़ता है, कुआं को बार बार खोदना पड़ता है, तब जाके आप पानी तक पहुंचते हैं। इसी तरह जब आप किसी भी जिक्र में तिकरार करते हैं, कोई भी जिक्र हो उसमें तिकरार बहुत जरूरी है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। मसलन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह आप करते हैं, उसमें रिपीटेशन जितनी आप करेंगे, लेकिन एक आसान जिक्र जो हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे बूढ़ों को याद है, वो जिक्र सलवात है, यानी जिक्र अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद है। कई रिवायात हैं लेकिन वक्त में कमी है। मासूम फरमाते हैं ये जिक्र सलवात जो है इंसान के गुनाहों को चुकना चूर कर देता है। फरमाया कि जिक्र सलवात में कसरत इख्तियार किया करो, जब भी रसूल खुदा का नाम सुनो बुलंद आवाज से सलवात पढ़ा करो, क्योंकि ये जिक्र तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है और ये जिक्र तुम्हारे दिल को भी नरम करता है और तुम्हारे वजूद की जमीन को आसान करता है। एक वाक्य और जहमत को तमाम करूं, इमाम रजा अलैहि सलाम के पास एक घोड़ा था और ये घोड़ा तैयार शुदा, अरबी में लफ्ज रियाजा इस्तेमाल किया गया, ऐसे घोड़े जो सिर्फ मालिक को बैठने देते थे लेकिन किसी और को बैठने नहीं देते थे। तो इमाम ने दावत दी कोई है जो इस घोड़े पर सवार हो जाए, लेकिन सारे देखने वाले डर रहे थे क्योंकि इस डर से कहीं ये घोड़ा गिरा ना दे। एक दो ने कोशिश भी की लेकिन घोड़े ने उनको जमीन पर गिरा दिया। इतने में एक 7-8 साल का बच्चा वो इमाम रजा को कहता मौला क्या इजाजत है कि मैं इस घोड़े पर सवार हो जाऊं। तो मौला ताज्जुब से पूछते हैं कि तुम इस घोड़े पे सवार होना चाहते हो, 7 साल की उम्र है, फरमा ये घोड़ा तुम्हें गिरा देगा का नहीं। मौला मुझे पूरा यकीन है जब मैं इस घोड़े पर सवार होऊंगा ये घोड़ा कंप्लीट मेरे इख्तियार में होगा। तो इमाम ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये घोड़ा तुम्हारे इख्तियार में, यहाँ तक उस बच्चे ने कहा मौला इस घोड़े की महार मेरे हाथ में है और इस घोड़े का इख्तियार मेरी मुट्ठी में। इमाम ने कहा वो कैसे, फरमाया मैंने इस घोड़े पर सवार होने से पहले 100 मरतबा सलवात पढ़ ली है और उस सलवात की बरकत में मुझे यकीन है कि ये घोड़ा मेरे इख्तियार में आ जाएगा। दूसरी चीज उसने कहा मौला मैंने आपकी विलायत को भी तजदीद किया, यानी मैंने अपने दिल को ये कहा कि तुम अहले बैत के मानने वाले हो, इमाम रजा के मानने वाले हो। उसके बाद मैंने जिक्र सलवात पढ़ा 100 मरतबा और इमाम रजा कहते हैं ठीक है तुम इजाजत है तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। फरमाया घोड़े पर सवार होता है और सवार होने के बाद घोड़ा कंप्लीट यार में होता है, इतना ही उस घोड़े पर सवारी करता है कि ये बेचारा हैवान थक जाता है और ये बेजबान हैवान इमाम रजा से मुखातब होता है कि मौला आज तक किसी ने मुझे इतना थकाया नहीं है, आप अल्लाह से दुआ करें मुझे सब्र दे या ये जवान मेरी पीठ से उतर जाए। तो इमाम रजा कहते हैं अल्लाह तुझे सब्र अता करे। और ये उस वक्त बच्चा उस घोड़े को कहता है तुम शुक्र खुदा करो कि तेरी पीठ पर एक मोमिन सवार है। उसके बाद ये घोड़े से ना उतरता है और इमाम रजा इसे कहते हैं आज तू इमाम रजा से जो मांगना चाहते हैं मांगो, क्योंकि तुम यकीनन एक मोमिन हो। यानी मोमिन वो होता है जो जिक्र करे और जिक्र का असर भी देखे, जिक्र सलवात करे और उसका असर आप देख रहे हैं, एक हैवान पर भी उसका असर हो रहा है। तो इमाम फरमाते हैं कि मुझसे गुलाम मांगने हैं, खजाना मांगना है, दौलत मांगनी है, माल मांगना है, जो भी मुझसे मांगना है आज तुम मुझसे मांगो। ये इमाम से कहते हैं मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चंद एक दुआ है मेरी। इमाम फरमाते कौन सी दुआ है, का मौला मेरी दुआ ये है कि खुदा मुझे बेहतरीन तकवा मुझे अता करे। एक तो मामूली तकवा का तस्वीर हसन हो, अल्लाह नजदीक बेहतरीन तकवा हो, वो तकवा मुझे अता करे। दूसरी दुआ है कहते हैं मौला रजा तकवा के साथ खुदा मुझे अपने इख्वान यानी जितने मेरे मुसलमान भाई हैं उनके हुकूक से मुझे आगाही अता करे, उनके राइट से मुझे आगाही अता करे। एक मरतबा मोमिन घर में नमाज तो पढ़ता है लेकिन अपने हमसाये अपने जानने वाले के हुकूक से आगाह नहीं है। मौला अली अगर एक रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे लेकिन रात के अंधेरों में यतीमों में जाकर खाना भी तकसीम करते थे, उन यतीमों के हुकूक से तो आगाह थे। आज स्पेशली जो मुख्तलिफ ममालिक में ये बीमारी आई हुई है, आज मोमिन खुद को तो बचा रहा है, अगर सरमाएदार है तो उसके घर में सरमाया भी होगा, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि इस माह मुबारक के रमजान में दूसरे मोमिनीन के मेरे ऊपर हुकूक कौन से हैं। हो सकता है कोई मोमिन परेशान हो, माल की कमी हो, तो इसने यही कहा कि मौला मुझे हुकूक अता करो। तो आप देखते हैं एक जिक्र सलवात में से इसको कितना कुछ मिल गया। तो बेहतरीन जिक्र है जिक्र सलवात। रसूल खुदा की हदीस भी है कि जब भी कोई मोमिन दुआ करता है इसकी दुआ के दरमियान और आसमान के दरमियान एक हिजाब है, ये हिजाब तब तक हटता नहीं, यानी आयतुल्ला भी हो अगर दुआ करेगा उसकी दुआ में हिजाब होगा, कोई वली भी होगा दुआ करेगा उसकी दुआ के दरमियान हिजाब, यानी हम यहाँ दुआ करते हैं,
सुभान
दुआ
अल्लाह
आसमान
सुभान
तक
अल्लाह,
जाती
वाह
नहीं है क्योंकि बीच में एक हिजाब है। अगर
बिल्कुल
ये हिजाब हटाना चाहते हो तो सलवात पढ़ो, ये
अल्लाह
सलवात आसमान और जमीन के दरमियान हिजाब को हटा देती है। तो जब भी दुआ करें सलवात पढ़ा करें, शुरू में भी आखिर में, और बेहतरीन औकात जो हैं वो न सुबह की नमाज के बाद है, कम से कम 100 मरतबा हर मोमिन सलवात पढ़े ताकि सलवात के बरकत में इसकी दुनिया भी आबाद हो, इसकी आखरत भी आबाद हो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत जो है वो आपने इसकी तौजीह भी बयान फरमाई कि अगर बाज़ लोग जो होते हैं जिनको अस्कार दिए जाते हैं वो सिर्फ उसको दोहराते रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता इसके पीछे फलसफा क्यों है, हम जो पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है, इसका फंक्शन क्या है। बहुत ही एहसन तरीके से आपने जो है ना इसके ऊपर तमाम जो है वो मारूजात हमारे नाज़रीन की खिदमत में अर्ज फरमाई। अली रज़ा जान काजमी साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। रोज़ा जो है, रोजे के अय्याम जो है उसमें इंसान खुदा का मेहमान करार दिया गया है, तो मेहमान खुदा से मुराद क्या है? अगर इस मामले को खोला जाए तो इसमें से कुछ नतीजा बरामद करने की, नतीजा अखज करने की हम कोशिश करेंगे क्या?
हाँ, अभी आवाज़ सही है। चलिए मैं दोबारा से इब्तिदा से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपने जो
जी
सवाल
जी
किया
हाँ
कि हम अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं और खुदावंद
मेहमान
मुताल हमारा मेज़बान है, तो ये कैसी मेहमानी है और कैसी मेज़बानी है? तो दुनिया का तो
बिल्कुल
दस्तूर ये होता है कि अगर कोई मेहमान आपके घर पे आता है, आप उसके सामने रोटी रखते हैं, आप उसके सामने खाना देते हैं, और रिवायात में भी बड़ी ताकीद है कि मेहमान हबीब खुदा के तौर पे याद किया गया है। और यहाँ तक मिलता है कि जब मेहमान तुम्हारे घर पे आए, अगर खुद से उठकर आ जाए, रिवायत में मिलता है, तो उसके लिए ज़्यादा जहमत नहीं करो, उसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करो, जो घर में है उसके सामने रख दो। मगर अगर तुमने किसी मेहमान को दावत करके बुलाया है, तो उसके लिए सही जहमत करना, उसकी सही मेहमान नवाजी करना, उसकी सही खिदमत करना। और इसी तरह हुजूर पाक खुद मेहमान नवाजी उनकी सीरत में नजर आ रही है। मगर सवाल करने वाला पूछ सकता है, खुदा हमें कहता है मेहमान की मेहमान नवाजी करो और तुम अच्छे मेजबान बनो, रसूल भी यही कहते हैं, मगर ये कैसी मेहमान नवाजी है
सुभान
खुदा की कि इस मेहमान नवाजी में खाना देने के बजाय बंद कर दिया जा रहा है, रोटी देने के बजाय बंद कर दी जा रही है, पानी देने के बजाय बंद कर दिया जा रहा है, गोया हमारे सामने से खाना हटा दिया जा रहा है, हमारे सामने से हमारे लिए हमारे ऊपर खाने पर पाबंदी लगा दी जा रही है। तो ये कैसी मेज़बानी है खुदावंद मुतहाल की, और हम कैसे अल्लाह सुबहान व तआला के मेहमान हैं? देखिए, अगर मेहमानी और मेज़बानी को सिर्फ पेट तक महदूद रखेंगे तो हमको ये मेहमानी पसंद नहीं आएगी, हमको ये मेज़बान इतना अच्छा नहीं लगेगा जो हमें खाना नहीं खिला रहा बल्कि सिर्फ हमें हमें मानवियत की तरफ बुला रहा है। जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा था आपकी खिदमत में कि ये दो चीजें 180 डिग्रीज ऑपोजिट की तरफ जा रही हैं, एक हमारा पेट और हमारे अक्ल दूसरी तरफ जा रहा है, हमारा शिकम हमको खाने की तरफ, लज्जत की तरफ, शहवत की तरफ लेकर जा रहा है, और हमारा अक्ल हमें मानवियत की तरफ लेकर जा रहा है। अगर चाहते हैं कि ये देखें कि इस पेट की अहमियत क्या है, उस आयत को आप सुन लें। आपके सामने मैं उस आयत की तिलावत करता हूँ कि खुदावंदे मुताल रसूल अल्लाह से कहता है, ए मेरे हबीब, तूने बड़ी कोशिश की, लोगों को हिदायत की दावत की, कुछ लोग तुम्हारे तरफ आ गए, मगर कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे तरफ आए ही नहीं, जिनको हिदायत नहीं मिली। तो उस वक्त खुदावंदे मुताल फरमा रहा है कुरान में, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यालमून। ए मेरे हबीब, इन्हें छोड़ दो, ये खाते रहें, ये पीते रहें, और लफ्ज यतमत्ताउ भी आया है, यानी हबीब इन्हें छोड़ दो, ये मजे उड़ाते रहें, हबीब इन्हें छोड़ दो, ये लज्जतें हासिल करते रहें, व युल्हिहिमुल अमल, उन्हें उनकी जो आरजू और ख्वाहिशात हैं उन्हें गाफिल बना देंगी, फसौफ यालमून, और अनकरीब वो जान लेंगे वो किस घाटे में थे। अजीब है, जब खुदावंद मुताल कुफार की सिफत बता रहा है, जिन कुफार को हिदायत नहीं मिली, कहा ये वो काफर हैं जिन्हें छोड़ दो, खाने दो यानी पीने दो, लज्जतें हासिल करने दो। गोया खुदावंद मुताल रसूल अल्लाह से कह रहा है, हबीब तू आए ही इसीलिए था, हमने तुझे भेजा ही इसीलिए था ताकि लोगों को मादी लज्जतों से निकालो, लोगों को खाने पीने की लज्जतों से निकालो और मानवी लज्जतें उन्हें अता करो। और यही असल मकसद है कि
सुभान अल्लाह
रमजान में हमारा जिस्म खुदा का मेहमान नहीं है, मगर हमारी रूह खुदा की मेहमान है। जिस्म तो जब से पैदा हुए थे बचपने से आज तक, ये दाना दाना, ये गंदुम, ये अनाज, जो जो खा रहे हैं, हम खुदा के मेहमान हैं, हमेशा से थे और हमेशा तक रहेंगे। जब से थे उस वक्त अल्लाह के मेहमान थे, जब तक रहेंगे तब तक अल्लाह के मेहमान रहेंगे। मगर ये वो मेज़बानी और मेहमानी नहीं है जिसमें अनाज, रोटी, बिरयानी, चावल, आलू, प्याज, टमाटर हमें दिए जाएं। ये मेज़बानी खुदा की मानवी मेज़बानी है। तो हमें कैसे पता चले कि हम इस मानवी मेज़बानी में खुदावंद मुताल के मेहमान बने हैं या नहीं बने हैं, या सिर्फ हम खाने पीने की लज्जतों के पीछे हैं? हाँ, अगर कोई मुसलमान रोजेदार ये देख रहा है कि उसका दिल मानवियत की तरफ जा रहा है, उसका दिल कुरान की तिलावत की तरफ जा रहा है, उसका दिल नमाज की तरफ जा रहा है, उसका दिल खैरात की तरफ जा रहा है, उसका दिल खैरात और इन्फाक की तरफ जा रहा है, अगर वो मानवियत महसूस कर रहा है, तो समझ जाए कि मैं खुदा का मेहमान बन चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ दुनियावी दस्तरखान की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे सामने एक मानवी दस्तरखान बिछ चुका है। कहीं ऐसे ना हो जाए 29th ऑफ रमजान की आवाज आ जाए कि कल ईद होने वाली है और ये दस्तरखान समेटा जा रहा है। जिस जिसने जो मानवी रिस्क लेना था वो ले चुका, अब ये दस्तरखान समेटा जा रहा है। इससे पहले कि वो दिन आए और वो अफसोस वाला दिन कि हमने रमजान गुजर गया और हमने इस रमजान के मानवी दस्तरखान से सिवाय सहरी और इफ्तारी के कुछ नहीं उठाया। हमने ये सोचा कि यही इफ्तारी है, जैसे वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये कि आसमान जो सितारों से आगे आसमान और भी है। तो हमें भी खुद के अपने लिए ये कहना चाहिए कि इफ्तारी और सहरी से आगे और भी है, जहां और भी है, आसमान और भी है। सिर्फ हम इफ्तारी और सहरी में फंसे न रहें कि रमज़ान में सिर्फ यही चेंजिंग आई कि डिनर हुआ और ब्रेकफास्ट तो पहले भी होता था, लंच डिलीट हो गया, लंच को हटा दिया और ब्रेकफास्ट और डिनर कर रहे हैं, थोड़ी टाइमिंग उसमें थोड़ा नज्म आ गया है। यही फ़र्क नहीं होना चाहिए रमज़ान में, बल्कि रमज़ान में मानवी रिज़्क हासिल करना चाहिए। देखिए आखिर में मैं बस, अगर टाइम है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी मुख्तसर है, एक रिवायत बता के मैं गुफ्तगू को समेट लूं। अभी आप बताइए,
हमारे पास सिर्फ एक मिनट रह गया। जी,
एक मिनट हो गया है, चलिए ठीक है। तो ये रिवायत इंशाल्लाह कभी और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो मकसद यही कि अगर हम चाहते हैं रमज़ान से फ़ायदा उठाएं और खुदावंदे मुताल की बारगाह में वो मेहमान ठहरें जिसने मानवियत से फ़ायदा उठाया है, तो हमें तवज्जो करनी पड़ेगी और खाने पीने और दुनियावी लज्जात से हटकर मानवी लज्जतों की तरफ हमें जाना होगा।
सुभान अल्लाह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं। दिल तो चाह रहा था कि अभी जो है वो ये रूहानी महफिल इसी तरह से बरकरार रहे और गुफ्तगू होती रहे, ये इल्म और फजाइल के जो दरिया हैं ये बहते रहें, मगर हमें अपने वक्त का ख्याल रखना होता है और अपने वक्त के अंदर ही अपने मैसेज को अपने नाज़रीन की अज़ान आलिया तक मुंतकिल करना होता है। बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना सैयद अली रज़ा जान काजमी साहब आपके, मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह आपके, मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काजमी साहब आपके, अपने तमाम मेहमानों ने गिरामी का, जिन्होंने हमें इस उसलूब की तरफ के किस तरह से हम इसमें मानवी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, परवरदिगार कि हम अगर मेहमान हैं तो उस मेहमान की कैफियत क्या है, उस मेज़बान की क्या कैफियत है, वो दस्तरखान है क्या, इन तमाम चीज़ों पे कि इस माह मुबारक का मकसद क्या है, भी हमसे क्या चाहता है, इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाल्लाह। और अगले प्रोग्राम में परवरदिगार ने अगर ज़िंदगी दी तो हम जो है वो इसमें अपने नाज़रीन को भी शामिल करेंगे और आखिर 10-15 मिनट जो है वो लाइव कॉल्स के लिए भी मुख्तस करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन जो है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात कल यूके टाइम से 3 बजे होगी। इजाज़त दीजिए, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।